हमें बहुत आनंद हो रहा है आप आज यहाँ आकर आप सबको मिलने का ये अवसर मिला है। मैं तो मानता हूँ ये मेरा सौभाग्य है और विशेष रूप से जो आप भगवान के भक्त बन रहे हैं, भगवान को भक्त बनना ही जीवन का असल उद्देश्य है। विशेष रूप से जब हमें मनुष्य शरीर मिलता है, ये शरीर बहुत ही दुर्लभ है, भिन्न भिन्न प्रकार का शरीर है, जैसे जानवर का शरीर है, चिड़िया का शरीर है, कीड़े का शरीर है, ये सारे जीव हैं और ये शरीर भी प्रकृति के कृपा से मिला है, उनका भी चेतना है, उनको भी सोचने का अवसर है। बल्कि मनुष्यों को जैसे चेतना का विकास करने का सुजोग है, वो और किसी को नहीं मिलता है। शरीर भिन्न प्रकार का होता है, एक तो ऊंचे मार्ग के शरीर, जैसे देवताओं हैं जो इस भौतिक जगत मतलब इस पृथ्वी के ऊपर और एक जगह है, पृथ्वी के ऊपर और छह लोक हैं, छह प्रकार की जगह है, जिसे भूल ये पृथ्वी का नाम है भूल लोक, जिसको हम भुवन बोलते हैं, भुवन या भूलोक। हम पाठ करते हैं ना भूगोल, भूगोल मतलब ये पृथ्वी का जो विवरण है उसे भूगोल अर्थात भूलोक का जो वर्णन है इसे भूतत्त्व या भूगोल कहा जाता है, जियोग्राफी। तो ये है भूलोक, ये भूलोक के ऊपर और छह लोक हैं। जैसे भूलोक का बाद में जो लोक हैं, भूलोक का पड़े जो लोक हैं, उसका नाम है भूबर लोक, उसके ऊपर है स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक के ऊपर है महर लोक, जन लोक, तप लोक और सबसे ऊपर ब्रह्मांड में जो स्थान है वो है सत्य लोक। ये सत्य लोक में ब्रह्मा जी विराज करते हैं। तो उस लोक का जो रहने वाले हैं, उन लोगों का जो रहने वाले हैं, उनका जो शरीर है वो हमारा शरीर से बहुत श्रेष्ठ है, बहुत बेहतर है। और ये भूलोक का नीचे और सात लोक हैं, जिसे पाताल लोक या सप्त पाताल कहा जाता है। वो सात लोक हैं अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो वैसे ही उच्च कोटि का शरीर मिलता है और निम्न कोटि का भी शरीर मिलता है, जैसे जानवरों का शरीर, चिड़िया का शरीर, कीड़े का शरीर, सरीसृप का शरीर, जैसे सांप का शरीर, मगर का शरीर, मछली का शरीर। तो ये शरीर भी, ये शरीर में भी आत्मा है, जीव है ये लोग, बल्कि उनका जो चेतना है वो उतना प्रकाशमान नहीं है। मनुष्य शरीर में जो चेतना का जो विकास वो बहुत ही श्रेष्ठ है। उच्च कोटि का जो शरीर है, देवताओं का शरीर, उनका क्षमता अधिक है, बल्कि चेतना का विकास करने का जो अवसर उनको उतना नहीं मिलता है। जैसे मनुष्यों का मिलता है। मतलब ये चेतना का विकास करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जैसे आजकल क्या हो रहा है, सब लोग जो कुछ कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, आप सोचिए, स्कूल कॉलेज में जाकर यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या होता है? ये पढ़ाई का उद्देश्य रुपया कमाना है ना। आजकल लोग सोचते हैं कि रुपया कमाना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। उन लोगों ने सोचते हैं कि रुपया अगर मिलेगा तो हमें सब कुछ पाने का क्षमता प्राप्त होगा, और सब कुछ अगर हमें प्राप्त होगा तो हमें मजा मिलेगा। असल में हम क्या चाहते हैं? असल में हम आनंद चाहते हैं, जिसे हम आनंद कहते हैं, नहीं तो साधारण भाव से हम सुख कहते हैं। हर व्यक्ति सुख चाहते हैं, Everyone wants to be happy. If I speak in English, how many of you will appreciate it? How many of you want me to speak in English? And how many of you want me to speak in Hindi? Okay, so maybe I'll just try to mix it. And mere liye angrezi mein bolna thoda aasan hota hai, to isliye मैं आलसी व्यक्ति हूं, इसलिए जो आसान होता है वो ही हम करने को चाहते हैं। हिंदी, मेरा हिंदी समझ रहे हैं ना आप लोग? ओके, तो मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या होना चाहिए? रुपया कमाना मनुष्य जीवन का उद्देश्य होना चाहिए? आप सोचिए, रुपये जो कमा रहे हैं लोग, जो रुपये कमाने के लिए इतने कोशिश कर रहे हैं, इतने तकलीफ उठा रहे हैं, उसका असल उद्देश्य क्या है? भौतिक जगत को भोग, भौतिक जगत को भोग करना। भौतिक जगत का भोग का मतलब क्या होता है? इंद्रिया का तृप्ति, इंद्रिया जिसे सेंस ग्रेटिफिकेशन कहा जाता है, इंद्रिया तृप्ति, इंद्रिय का तृप्ति। बल्कि इंद्रिय का तृप्ति होने से भी क्या मन का सही आनंद मिलता है हर समय? देखिए, रुपया कमाए हैं आप लोग, बहुत कुछ जो आप चाहते थे वो भी आप प्राप्त हो चुके हैं। अच्छा, मे बी ही कैन गो एंड स्पीक समवेयर एल्स। एंड सुनो, हाँ तुम सुनो, हाँ तुम हमको सुनेंगे या हम सब तुमको सुनेंगे, बताओ। हाँ, अगर तुम बोलना चाहते तो यहाँ आके बैठो, ठीक है? ओके, तो ऐसे बात यह है कि हमें समझना होगा कि हमारा जो चेतना है, हमारा जो विचार करने का जो क्षमता है, हमारा जो हमें जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, इसको सदुपयोग कैसे होना चाहिए, कैसे हमें करना चाहिए। दो मार्ग हो सकता है, एक है जो भौतिक जगत का भोग। भौतिक जगत का भोग किस रूप से होता है? भौतिक जगत का जो सुख है वो चार कोटि का केवल होता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार, निद्रा, भय, मैथुनंश, बल्कि उसके बाद कहा जाता है कि ये पशु भी समाना। ये आहार, निद्रा, भय और मैथुन जो हैं, ये पशुओं में भी कर रहे हैं। हम देखते हैं पशुओं ने मनुष्य से भी अधिक एक्सपर्ट है, ये आहार निद्रा भय मैथुन में। खाना पशु जितना खा सकते हैं, एक हाथी जितना खा सकते हैं, कोई मनुष्य उतना खा सकेंगे नहीं। भल्लू जैसा सो सकते हैं, कोई मनुष्य सो सकेंगे? 6 महीना लगातार सो सकता है भल्लू। साल में भल्लू 6 महीना सोता है और कभी कभी केवल जागते हैं, फिर से थोड़ा बहुत जागा बस, उसके बाद फिर 6 महीने के लिए सो जाते हैं। तो ऐसे जो आहार निद्रा भय मैथुनंच ये पशु भी, पशुओं को भी ये क्षमता है। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या? पशुओं जैसा जीवन बिताना चाहिए? मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये पशु प्रवृत्ति को, पशु प्रवृत्ति को तृप्ति साधन के द्वारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य सफल कभी नहीं होगा। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य जीवन का, कृपा करके जिसके पास मोबाइल फोन्स हैं, आप कृपा करके बंद कर दीजिए, नहीं तो साइलेंट में रख दीजिए। ये आज एक इंटरव्यू था रेडियो में, तो जाते ही उन लोगों ने हमें बोला कि अगर आपके पास मोबाइल फोन है स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि रेडियो में जब प्रोग्राम हो रहा है तब अचानक अगर डा शुरू हो गया तो कैसा लगेगा, प्रोग्राम खराब हो जाएगा। वैसे ही क्या होता है, जब हम कुछ कार्य में ध्यान लगाकर हम जब सुनते हैं तो क्या होता है, ऐसा कुछ शब्द आवाज अगर आता है तो वो डिस्टर्बेंस होता है उससे। तो वैसे मनुष्य जीवन का उद्देश्य के बारे में हमारे शास्त्र में वर्णन हुआ है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब क्या है ये समझने के लिए हमें ये थोड़ा हम एक दृष्टांत हम रखेंगे आपके पास। ब्रह्मा जी है इस भौतिक जगत के प्रथम सृष्ट जीव। इस ब्रह्मांड में पहले कौन, सबसे पहले कौन आए थे? ये ब्रह्मांड क्या ऐसे हर समय क्या ऐसे सब मनुष्य से भरा हुआ था? ब्रह्मांड का जब सृष्टि हुआ था तब इस ब्रह्मांड में कोई नहीं था, कोई भी एक भी आदमी नहीं था। पहले जो आए थे वो है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ आपको पता है? कैसे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ? भगवान का नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ था और ब्रह्मा जी उस कमल में बैठे हुए थे। उस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म, मतलब उत्पत्ति हुआ था, आविर्भाव हुआ था, इसलिए ब्रह्मा जी का नाम है कमल योनि। कमल ही उनका योनि है जिसमें उनका जन्म हुआ है। या आज मतलब जिनका जन्म नहीं हुआ है, जन्म नहीं, सीधा भगवान के, भगवान से यहां आ गए थे। फिर भी ब्रह्मा जी को पता नहीं था कि वो कौन है। इस भौतिक जगत में जो भी आते हैं अज्ञान में आते हैं, मतलब उनको पता नहीं रहता है कि वो कहां से आए हैं, वो कौन है और उनको क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी का मन में भी ऐसी भावना आया था। जैसे ब्रह्मा जी देखा कि कमल पर बैठे हैं और उनका कुछ भी याद नहीं था पहले का, कहां से आए हैं, कौन है। तो ब्रह्मा जी का मन में ये प्रश्न आया था, मैं कौन हूं। तो ब्रह्मा जी सोचा अगर मुझे पता चलेगा कि मैं कहां से आया हूं तब हमें पता चलेगा कि मैं कौन हूं। जैसे आपको कभी कभी ऐसा होता है ना किसी आदमी को कि याद खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, पागल हो जाता है या कुछ याद नहीं रहता है। उसको याद नहीं है बल्कि दूसरे का जब आकर उसके बताता है कि तुम ये हो, तुम ये वो हो, तब उसको पता चलता है। तो ब्रह्मा जी भी ऐसे सोचे कि अगर उनको पता चलेगा कि वो कहां से आए हैं तब उनको पता चलेगा कि वो कौन है। तो ये सोचकर ब्रह्मा जी वो कमल का जो नाल है उसे उतरने लगा। बहुत दिन तक उतरने के बाद भी, बहुत सालों तक उतरने के बाद भी ब्रह्मा जी उसका जो तल ही couldn't reach the bottom of that lotus, प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर ब्रह्मा जी उसके ऊपर आ गए, कमल के ऊपर चढ़ गए। तब ब्रह्मा जी भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी को ये या ज्ञान प्राप्त हुआ था जिसे दिव्य ज्ञान कहा जाता है। ब्रह्मा जी का प्रश्न था मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मैं हमें यह क्या करना चाहिए। तो ये तीन प्रश्न जो हैं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और हमें यहां क्या करना चाहिए, ये तीन प्रश्नों को ब्रह्म जिज्ञासा के रूप में वर्णन हुआ है। ब्रह्म जिज्ञासा मतलब आध्यात्मिक जिज्ञासा, जीवन के असल उद्देश्य प्राप्त होने का जिज्ञासा। तो एक साइड में है पशु जैसे आहार निद्रा भय मैथुन भित्तिक जीवन और दूसरे तरफ है ब्रह्म जिज्ञासा। एक है शरीर के तृप्ति के द्वारा सुख प्राप्ति के प्रयास और दूसरे और है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होकर जीवन के असल उद्देश्य सफल करके आनंदमय लोग में प्रवेश करना, भगवत धाम को प्राप्त होना। तो ये दोनों मार्ग हमारे सामने हैं। तो आप सब कौन से मार्ग चुने हैं? आध्यात्मिक मार्ग, ब्रह्म जिज्ञासा के मार्ग चुने हैं। अर्थात आपका जीवन सफल बनाने के लिए आप तैयारी करना शुरू किए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। आई एम वेरी हैप्पी to see that you all have accepted the spiritual path. Now, for spiritual path, the most important consideration is to have the spiritual direction, to get to know the spiritual direction. The person who knows the spiritual path himself, he only can guide others on this path. राह कौन दिखा सकते हैं? जिसको पता है वो ही केवल दिखा सकते हैं। जिसको सही मार्ग को, सही राह को पता नहीं है या जो अंधा है वो कभी दूसरे को राह दिखा सकते हैं? नहीं। तो पहले हमको वैसे आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक का जरूरत होता है। जैसे हम आध्यात्मिक मार्ग को ढूंढ रहा था, बहुत जगह ढूंढा, ढूंढते ढूंढते बाद में जब देखा, ढूंढते ढूंढते रहा, बल्कि जब ढूंढते ढूंढते समय हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिला? व्हाट डिड वी रियलाइज व्हेन यू आर सर्चिंग इन मेनी केसेस दैट ऑल दोज हु आर प्रिटेंडिंग टू बी द गाइड्स दे देमसेल्व्स आर ब्लाइंड। I had that experience myself. I was searching for a guru in India, and I went to many mats. I met many sadhus, so-called sadhus. But I could see that they do not know the way themselves. And in this way, when I almost gave up any possibility of finding a proper guide or guru, then I came across Srila Prabhupada through his books. And Prabhupada ji ke jo kitab hame mila tha, wo hai The Nectar of Devotion, Bhakti Rasamrit Sindhu. Aur jab hum ye padhna shuru kiya, to from the very first page, pehle page se hi hame aisa laga ki ha, he knows the way. Kyunki Prabhupada ji pehle hi varnan kiye bhagwan kon hai. Prabhupada ka varnan tha ki bhagwan vyakti hai. Bhagwan koi vaise nirakar vastu nahi hai. Bhagwan sakar purush hai, vyakti hai. Keval purush hi nahi, bhagwan hai purushottam. Sare purushon mein se shreshth purush hai bhagwan. Aur jab hum adhyatmik marg mein प्रयास करते हैं, तो उद्देश्य क्या रहता है वो आध्यात्मिक प्रयास का? मुक्ति. उस समय मैं मुक्ति के बारे में ढूंढ रहा था, और प्रभुपाद जी का किताब पढ़ के फर्स्ट ये सोची कि एकदम पहले पृष्ठा से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज, प्रभुपाद बताया कि 5 प्रकार का मुक्ति है. मैं मुक्ति के बारे में ढूंढ रहा था, और प्रभुपाद मुक्ति के बारे में बताया कि केवल 1-2 नहीं, 5 प्रकार का मुक्ति है. और उस 5 प्रकार के मुक्ति में से एक है नेगेटिव मुक्ति, और 4 है पॉजिटिव मुक्ति. एक प्रकार का मुक्ति जो साजुज्य मुक्ति है, जो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाने का जो मुक्ति है, वो असल में मुक्ति नहीं है. वो है सबसे गहरा बंधन, जिसके द्वारा असुरों को मोहित किया जाता है. असुरा हरिना हता, जो असुरों को भगवान खुद हत्या करते हैं, उन असुरों को वो मुक्ति मिलता है. तो मुझे पता चला तब कि असुरों का जो भगवान को द्वारा मृत्यु होने से असुरों का जो मुक्ति मिलता है, वो मुक्ति हमें नहीं चाहिए. और प्रभुपाद जी ने बताया जो 4 प्रकार का जो मुक्ति है, वो है सारूप्य, सामीप्य, सालक्य और शास्ति. अर्थात भगवान के नजदीक रहना के रूप जो मुक्ति, सामीप्य, सारूप्य, भगवान जैसे रूप प्राप्ति होना. सालक्य, भगवान जिस लोक में रहते हैं उस लोक में रहने का अवसर मिलना. और शास्ति, भगवान को जो शक्ति है जैसे, वैसी ही शक्ति प्राप्त होना, वैसे ही क्षमता प्राप्त होना. अर्थात ये 4 प्रकार का जो मुक्ति है, ये भगवान के साथ संपर्क जोड़ने के माध्यम केवल प्राप्त हो सकते हैं. अर्थात जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान के साथ संपर्क जोड़ना. और इसके पश्चात प्रभुपाद क्या बताए, कैसे भगवान के साथ हम संपर्क जोड़ सकते हैं? संपर्क जोड़ने का माध्यम क्या होता है? प्रेम. और प्रेम का प्रकाश कैसे होता है? सेवा. जैसे माँ बच्चा को प्यार करती है, माँ क्या बोलते हैं? मैं तुमको प्यार करता हूं बस ना. क्या माँ सुबह से शाम तक, या शाम तक नहीं, केवल नहीं, केवल नहीं, 24 घंटा अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहती है. क्यों? क्योंकि उनके प्रति, बच्चे के प्रति उनका प्रेम के कारण। तो वैसे ही भगवान को प्रति हमारा जो प्रेम है उसकी प्रकाश सेवा के माध्यम ही केवल हो सकता है। देखिए कितने सरल रूप से प्रभुपाद इसका इस राह को हमें दिखा रहे हैं। तो ये तो वैसे जब हम सद्गुरु के समक्ष आते हैं तो हमें बहुत आसानी से सही मार्ग प्राप्त हो सकते हैं। सो ऐसे मनुष्य जीवन का उद्देश्य सफल का शुरुआत ऐसे प्रभुपाद जैसे सद्गुरु के साथ संपर्क जोड़ने के, उनकी शिक्षा प्राप्त होने के माध्यम ही केवल हम हो कर सकते हैं। और देखिए प्रभुपाद का जो शिक्षा है और उस शिक्षा का जो डिस्ट्रीब्यूशन का आयोजन प्रभुपाद कितने सुंदर रूप से कर चुके हैं, वो है इस्कॉन संस्थान। इस्कॉन में जो जब आप आते हैं तो क्या मिलता है, प्रभुपाद जी का शिक्षा, प्रभुपाद जी के किताबों के माध्यम, ग्रंथों के माध्यम प्रभुपाद कितने सरल रूप से ये आध्यात्मिक ज्ञान को प्रदान कर रहे हैं। तो आप लोग प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ रहे हैं अच्छा, प्रभुपाद जी की किताब पढ़ने से कैसा लगता है, कुछ डज इट मेक सेंस व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग। देखिए जैसे मैं बता रहा था कि प्रभुपाद क्या बताएं, भगवान कौन है, आप सबको पता चला है भगवान कौन है, भगवान कौन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान क्या एक है या अनेक है, एक है। तो हम ये भारत में हिंदू धर्म में तो ऐसे बहुत सारे आदमी सोचते हैं भगवान एक नहीं है, बहुत सारे भगवान है, नहीं भगवान एक है, बल्कि देवताओं अनेक है। देवता और भगवान में जो अंतर ये समझना होगा। कोई आदमी बोलते हैं ओ गणेश को पूजा करना, देवी को पूजा करना, इंद्र का पूजा करना और कृष्ण का पूजा करना एक ही है। एक है क्या, नहीं। जैसे इंद्र पूजा गोवर्धन लीला के माध्यम कृष्ण क्या हमें शिक्षा दिए हैं, कृष्ण के कृष्ण लीला में गोवर्धन पूजा हुआ था, इंद्र पूजा को रोककर कृष्ण ने गोवर्धन पूजा करने का सलाह दिए थे और इस कारण इंद्र बहुत क्रोधित हो गया था और वृंदावन को ध्वंस करने का प्रयास किया था, बल्कि अंत में क्या हुआ, इंद्र को पता चला कि अरे ये तो मेरा प्रभु है, कृष्ण ही नारायण है, केवल नारायण नहीं कृष्ण ही नारायण का स्रोत है, नारायण कृष्ण का अवतार है, अंश है। तो ये ऐसे सही शिक्षा के द्वारा, शिक्षा के माध्यम हम असही ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। और शिक्षा प्राप्ति के लिए पहले शिक्षक का जरूरत है। आध्यात्मिक शिक्षा जो प्रदान करते हैं उसे गुरु कहते हैं, जो भी शिक्षा देते हैं वही गुरु है। बल्कि जो आध्यात्मिक विषय का शिक्षा देते हैं वो है सद्गुरु, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान है सद ज्ञान या दिव्य ज्ञान। तो गुरु क्या करते हैं, गुरु क्या शिष्य बनाते हैं, गुरु गुरु बनाते हैं। सही गुरु जो सद्गुरु हैं वो जैसे आपको जब शिक्षा मिलता है तो आप शिक्षा प्राप्ति के बाद क्या क्या करते हैं, दूसरे को सिखाते हैं। तो ये जो गुरु और शिष्य के जो संपर्क के माध्यम परंपरा का सृष्टि होता है। जैसे प्रभुपाद जी एक गुरु आकर बहुत सारे व्यक्तियों को शिक्षा देकर उन सबको गुरु। जो भी ये ज्ञान प्राप्त होते हैं और जब वो इस ज्ञान को प्रदान करने का प्रयास करते हैं तो वो गुरु बन जाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब भारत में भ्रमण कर रहे थे परिब्राजक के रूप में, तब चैतन्य महाप्रभु जहां जहां जाते थे सबको कृष्ण भक्ति के बारे में शिक्षा देते थे, और शिक्षा देने के पश्चात महाप्रभु उनको उपदेश देते थे, जाड़े देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसके साथ तुम्हारा मुलाकात हो उनको ही कृष्ण के बारे में उनको सब सिखाओ, उपदेश प्रदान करो। और आमार आज्ञाय गुरु होइया तारो एई देश, मैं तुम्हें निर्देश दे रहा हूं कि तुम गुरु बन जाओ। अर्थात जो ही कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं वही गुरु है। तो आप लोग प्रचार कर रहे हैं, आप में से कौन कौन प्रचार कर रहे हैं? वेरी गुड। आप में से कौन कौन प्रचार करना चाहते हैं? ओके, सो आप सब गुरु बन गए हैं। ऐसे गुरु का कोई स्टैम्प का जरूरत नहीं है। ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो उत्तरदायी है, ये गुरु बनाते हैं। और महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं, मैं निर्देश दे रहा हूं, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं। आमार आज्ञा, आज्ञा का मतलब होता है आदेश, कमांड। तुम गुरु बन जाओ। अगर तुम गुरु नहीं बनोगे तो इस भक्ति का प्रचार कैसे होगा? सब अगर शिष्य बनकर रहेंगे तो भक्ति का प्रचार होगा? तो हम क्या चाहते हैं, कि भक्ति का प्रचार हो या नहीं होना? हम चाहते हैं कि भक्ति का प्रचार हो, तो प्रचार करने के लिए हमें क्या करना होगा? हाँ, गुरु बनना होगा। बल्कि गुरु बनने का पहले शिष्य बनना होता है। फर्स्ट वी हैव टू बिकम अ स्टूडेंट, देन यू बिकम अ गुरु। महाप्रभु से जाड़े देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये कृष्ण का, कृष्ण के बारे में समझना होगा और दूसरे को तब हम समझा सकेंगे। तो आप लोग जो भी हो, जैसे देखिए आप कैसे गुरु बन सकते हैं और ये गुरु बनने का उत्तरदायी आप ग्रहण कर सकते हैं। आप सब घर में हैं, आपके बच्चे हैं, घर वाले हैं, तो बच्चे को क्या शिक्षा देना चाहिए? बच्चे को देखिए कृष्ण भक्ति के बारे में तो शिक्षा स्कूल में नहीं मिल रहा है, कॉलेज में नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो ये शिक्षा प्राप्त होना जरूरी है हाँ बच्चे के लिए। तो कोई अगर नहीं दे रहा है तो आपको ही देना होगा। तो आप जब आपको बच्चे को सिखाते हैं तो आप क्या उसके गुरु बनते हैं? तो ऐसे ही इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हमें भगवत श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी का, भगवत गीता में कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं उसका प्रचार हमें करना होगा। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि ये जो 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको आप बहुत सुंदर रूप से सफल बनाएं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को? Does anybody have any question? Yes. Yeah. Oh, acha. What do you mean? Yeah. Give her the mic.
Hare Krishna. प्रभु जी, हम महाराज जी, हम कहाँ से आए हैं एक्चुअली?
वेरी गुड। ये इसका जवाब तो मैं नहीं दिया था। वेरी गुड दैट यू रिमाइंडेड मी। तीन प्रश्न था, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। अच्छा, तो हमारा जो स्थिति है, हमारा जो ये है एग्जिस्टेंस जो है वो दो प्रकार के हैं, एक शरीर का और एक है आत्मा का। शरीर का जो शरीर कहां से आया है इसके बारे में तो आपको जानकारी पूरा है, उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। अगर कोई पूछेगा कहां से आए हैं, आप बोलेंगे घर से आया हूं और फलाना जगह में मैं रहता हूं, ये आप बोल सकते हैं। बल्कि असल में हमारा जो परिचय है वो है आत्मिक परिचय, आत्मा का परिचय। आत्मा कहां से आया है? आत्मा इस भौतिक जगत का नहीं है, इस भौतिक जगत के परे और एक जगत है जिसे भगवान अपना जगत के रूप में वर्णन किए हैं, स्वधाम, अपना जगत, जिसे और एक नाम है परा प्रकृति या वैकुंठ लोक, दिव्य जगत, परम धाम। भगवान कह रहे हैं, देखिए कितने सुंदर रूप से इसका जवाब भगवान स्वयं गीता में प्रदान किए हैं। भगवान कह रहे हैं कि भूमि रापो अनलो वायु खं मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति अंग में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। इस भौतिक जगत का रचना इस आठ तत्वों से हुआ है, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये आठ तत्वों से इस भौतिक जगत का रचना हुआ है। बल्कि जीव भूतांग महाबाहु, जो जीव जो इस भौतिक जगत को जो धारण कर रहे हैं, जो इस भौतिक जगत को, भौतिक जगत का प्रकाश होने का जो मूल कारण जो है, जो कारण जो है जीव, वो जीव आए हैं अपरयामितस्तन्नांग प्रकृतिं विद्धि में पड़ा। इस भौतिक जगत के परे और एक जगत है जो है आध्यात्मिक जगत या भगवान का धाम। हम सब वहां से आए हैं, ये शरीर हमको यहां मिला है। बल्कि शरीर को जीवन प्रदान करने वाला जो आत्मा है वो आत्मा भगवत धाम से आए हैं और वो आत्मा है भगवान का अंश। तो वही है जीव का परिचय, जो ब्रह्म जिज्ञासा के बारे में मैं कह रहा था। तो ब्रह्म जिज्ञासा का प्रश्न तो है मैं कौन हूं, इसका जवाब है मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर में हूं इसलिए इस शरीर में चेतना है, इसलिए इस शरीर में जीवन है, है ना। ये शरीर जिंदा है क्यों? क्योंकि शरीर में आत्मा है और वो आत्मा हूं मैं। जब आत्मा शरीर छोड़ के चला जाएगा तब क्या होगा? ये शरीर का मृत्यु होगा, मतलब ये शरीर जो जड़ था वो पूरा जड़ बन जाएगा, इसमें चेतना नहीं रहेगा। तो चेतना का उत्पत्ति कहां से हो रहा है, चेतना का स्रोत कहां, कौन है? आत्मा है। तो वही है मैं जो कहता हूं कि मैं है वो आत्मा। तो ये तो गया, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। तो अब प्रश्न है हमें क्या करना चाहिए, यहां क्या करना चाहिए। इसके बारे में भी शुरू में मैं बताया था कि हम चाहे तो ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार कार्य के लिप्त होकर ये अपना जीवन बिता सकते हैं, ना तो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के प्रयास करते हुए अर्थात भगवान के साथ संपर्क जोड़ने का प्रयास करते हुए हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग मी दैट आई डिड नॉट आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। सो आई वॉन्ट मेनी क्वेश्चंस, आई वॉन्ट टू हियर। शर्माना नहीं, मन में अगर प्रश्न है तो पूछना कौन प्रश्न पूछेंगे? यस
हरे कृष्ण महाराज जी.
हरे कृष्ण.
आई हैव अ क्वेश्चन, पता नहीं हाउ मच इट इज राइट, बट आई जस्ट वांट टू नो इफ इट सेज दैट आत्मा इज रिमेन सेम, मतलब शरीर डाय हो जाता है बट आत्मा रहती है, बट व्हाई इज इट सो कि कभी तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है कभी कम हो रही है, देन वेयर दिस आत्मास गो?
हाँ देखिए, आत्मा का तो उत्पत्ति इस जगत में नहीं हो रहा है. आत्मा आध्यात्मिक जगत से आया है तो वहां से आ रहे हैं. कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा हो सकता है, कभी यहाँ पॉपुलेशन कम हो सकता है. जैसे कारागार में कभी कभी कैदी का नंबर बढ़ता है कभी कमता है. हाँ, क्योंकि कैदी तो कारागार में कैदी का उत्पत्ति नहीं हो रहा है, कैदी आ रहा है बाहर से. अच्छा, ये तो एक विचार है. और आत्मा का कमी हुआ है या ज्यादा हुआ है ये समझना मुश्किल है, क्योंकि आत्मा जो है वो तो केवल मनुष्य का ही नहीं है, पेड़ पौधे का भी आत्मा है, जानवरों का भी आत्मा है, चिड़िया का भी आत्मा है. तो आप कह सकते हैं कि मनुष्य का पॉपुलेशन बढ़ गया है, बल्कि कितना कितने जानवरों का मृत्यु हो चुका है वो हम हिसाब रखे हैं, कितने पेड़ पौधे को हम खत्म कर दिया है उसको विचार किया है हमने. तो आत्मा का कमी हुआ या ज्यादा हुआ ये हम ऐसे मनुष्य का नंबर से हम डिटरमिन कर नहीं पाएंगे. हरे कृष्णा. एनी अदर क्वेश्चन? Yeah, Mike. Switch on kiji.
Hello, Hare Krishna. हाँ प्रभु जी, जैसे आजकल इतने लोग मर रहे हैं जैसे एक्सीडेंट में या मतलब प्राकृतिक विपदा मतलब कारण चाहे मतलब, तो मतलब उन लोग की मृत्यु ऐसे ही लिखी हुई है जैसे एक साथ इतने लोग इतने इतने मर जाते हैं, तो उन लोग की मौत ऐसी लिखी रहती है क्या इस रूप में आने का मतलब?
देखिए, जो कुछ होता है अपना कारण कर्म के अनुसार होता है. जो अच्छा भला काम करते हैं उसको इनाम मिलता है, जो बुरा काम करते हैं उनको सजा मिलता है. तो वैसे ही हम देखते हैं कभी कभी कुछ आदमी को सुख मिल रहा है, अच्छा सा जीवन मिल रहा है, तो हमें समझना होगा कि पहले उन्होंने भले काम अच्छे काम किए हैं, इसलिए उसका फल के स्वरूप ये फैसिलिटीज मिल रहा है. और हम देखते हैं कभी किसी आदमी को बहुत परेशानी होता है, कष्ट मिलता है, तो समझना होगा कि वो पीछे पहले बुरा काम किया था, इसके कारण उसका सजा मिल रहा है. तो एक्सीडेंट वगैरह जो है ये एक प्रकार का सजा है. और जब ऐसे अपमृत्यु कहा जाता है, एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ का कारण होता है कि पाप के कारण उसका आयु का क्षय हुआ है. जैसे सरल विचार से हम ऐसे देख सकते हैं कि 100 साल तक मनुष्य का आयु होना चाहिए, 100 साल तक होना चाहिए साधारणतया. बल्कि जब हम बुरा काम करते हैं, पाप करते हैं, पाप काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, तो हमारा आयु का माइनस होता है. तो ऐसे आयु था 100 साल का, बल्कि बुरा काम करते हुए 40 साल भी खत्म हो गए हैं. तो मतलब जब हम 60 साल में आया तो हमको यहां से निकलना होगा. ऐसा हो सकता है कि शरीर तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, सबल है, बल्कि अचानक हमारा आयु खत्म हो गया. तो क्या हो उस समय, क्या होता है? अचानक मृत्यु होता है। तो ये अचानक मृत्यु जो है उसे एक्सीडेंटल डेथ कहा जाता है।
लोग चले जाते हैं एक्सीडेंट में,
इसलिए समझना होगा कि उनका पूर्व जन्म का जो ये था उस कर्म के अनुसार इस जिंदगी में आना पड़ा। और कभी केवल जो ऐसा ही नहीं कि केवल बुरा काम करने से ही आयु का कम ऐसे ये होता है, इसका एक दृष्टांत ऐसा है कि प्रभुपाद जब वृंदावन में थे तो हमारे गुरु भाई जो हेटी के रहने वाले थे उसका एक छोटा सा बच्ची थी। तो वो बच्ची एक दिन वो विदेश से आया था, तो भारत में बहुत मलेरिया होता था, तो मलेरिया का टैबलेट था क्लोरोक्विन। तो क्लोरोक्विन का बॉटल्स में वो जो टैबलेट्स था वो बच्चा अचानक खा लिया और अचानक उसका मृत्यु हो गया। बहुत कष्ट की कारण था ये, हमको स्वाभाविक रूप से एक बच्चा जो इतनी सुंदर थी, इतनी शी वाज सो स्वीट एंड सो चार्मिंग, ऑल ऑफ अ सडन शी जस्ट लेफ्ट। जब प्रभुपाद ने सुना तो प्रभुपाद बोला कि पूर्व जन्म में वो अपना काम पूरा नहीं कर पाया, भक्ति का काम, कुछ समय के लिए उसको आना पड़ा वो काम पूर्ण करने के लिए, इसलिए वो वृंदावन में आया। और वृंदावन में आके उसका जो भक्ति का जो बाकी रह गया था वो पूरा कर लिया और अब वो भगवान के पास चले गए। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भगवान थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया वो पूरा करने के लिए आया, पूरा करके भगवान के पास वापस चले गए। यस, यू हैव अ क्वेश्चन?
जैसे हमें किसी की कृपा से भक्ति मिली है तो मतलब मैं शिव जी की बहुत भक्त थी बचपन से ही, तो मुझे लगता है कि उनकी कृपा से मुझे मिली है, तो मुझे उनको थैंकफुल तो रहना चाहिए हमेशा ही, कि मतलब उनको हमेशा भूल जाना चाहिए अभी
नहीं।
जैसे अब मैं कृष्ण की भक्ति कर रही हूँ।
जो भक्त का एक गुण सद्गुण ये होता है कि ही इज ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का संस्कृत एक्सप्रेशन है कृतज्ञ, हिंदी में क्या बोलते हैं ग्रेटफुल? आभारी रहते हैं, आभारी। जो हमारे लिए इतने बड़े काम किए हैं उसको हम उनको हम कैसे भूल सकते हैं, है ना? परंतु उनके हर साल के हर समय के लिए नित्य काल के लिए उनके प्रति आभारी रहना चाहिए। जो कृष्ण भक्ति हमें दिए हैं उनके प्रति आभारी रहना चाहिए। ऐसा कभी भी होता भी ऐसा कि हमें कृष्ण भक्ति दिया बल्कि बाद में वो ही खुद चला गया मार्ग से, ऐसा कभी बहुत सारे ये ऐसा हुआ है। तो हमें जब हम उसको भक्ति मार्ग में ला नहीं सकते हैं तब कम से कम भगवान के पास प्रार्थना करना चाहिए कि कृपा करके आप उनको फिर से अपने चरण कमलों का स्थान सहारा दीजिएगा।
क्लियर नहीं हुआ?
मतलब जो देखिए जो भक्ति प्रदान किए हैं, आपको आज भक्ति नहीं था, भक्ति किया कैसे मिला? भक्तों से मिला। तो उसका मतलब हुआ वो आपके गुरु हैं, है ना? तो गुरु के प्रति किस भावना पे पोषण करना चाहिए? आप बताइए, समझे प्रश्न? मिला है आपका जवाब? डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू गेट द आंसर? और इफ यू डिड नॉट लेट टेल मी, लाइक आई कैन आई ट्राई टू एक्सप्लेन फर्दर। हाँ, अच्छा,
एक्चुअली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं आज भी शिव जी के मंदिर जाके उनको थैंक्स बोल रही हूँ तो गलत तो नहीं है ना?
नहीं नहीं, शिव जी वैष्णवानंग जथा शंभु, सारे वैष्णवों में से श्रेष्ठ हैं शिव जी। शिव जी भगवान का भक्त है। अगर शिव जी की कृपा, ये तो शिव जी का सही कृपा है कि उनकी कृपा से आप भगवान के चरण कमलों के सहारा मिले हैं। तो शिव जी के प्रति निष्ठा, शिव जी के प्रति भक्ति जरूर रखना चाहिए। हाँ जरूर। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन हियर, देन आफ्टर दैट आई विल टेक क्वेश्चन। आई थिंक यू हैव टू कम क्लोजर बिकॉज ये माइक नहीं जाएगा वहां तक।
हरे कृष्णा गुरु महाराज। ये पूछना चाह रही थी कि जैसे डेथ होती तो आत्मा जाती है, स्थूल शरीर हमारा यही रहता है, तो क्या आत्मा के साथ हमारा सूक्ष्म शरीर भी जाता है, मन बुद्धि अहंकार?
मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के समय हम ये स्थूल शरीर को छोड़ते हैं, बल्कि सूक्ष्म शरीर आत्मा को लेकर दूसरा शरीर में जाता है। सूक्ष्म शरीर का मृत्यु नहीं होता है। मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ जो सूक्ष्म शरीर, उसका कभी मृत्यु नहीं होता है, बल्कि उसका परिवर्तन होता है। भक्ति के माध्यम उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो भौतिक मन में, भौतिक मन के द्वारा जब हम भगवान को चिंतन करते हैं, मन मना भव, उसी कारण मन आध्यात्मिक रूप प्राप्त होता है, आध्यात्मिक बन जाता है। सही मन जो है, बुद्धि जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो बुद्धि योग बन जाता है। ददामि बुद्धि योगम तम जेन माम उपजानती थे, जिसके द्वारा वो मेरे पास आ सकता है। और वैसे जब हम भगवान के सेवा शुरू करते हैं, तब भगवान का हम जब दास बन जाते हैं, तो हमारा जो अहंकार जो है, जो जिसका मतलब होता है हमारा व्यर्थ परिचय, फॉल्स आइडेंटिटी, फॉल्स ईगो, मिस्टेकन आइडेंटिटी, उस आइडेंटिटी का खत्म हो जाता है और हम हमारा स्वरूप में हमारा स्थिति होता है, जो स्वरूप में हम भगवान के दास हैं। तो तब क्या होता है, मन बुद्धि और अहंकार रहता है नहीं, तब वो आध्यात्मिक रूप प्राप्त होकर भगवान के पास वापस चले जाते हैं। राधाचरण प्रभु, डू यू हैव टू गो नाउ? ओके, आई विल टेक द लास्ट क्वेश्चन। शी जस्ट, एनीवे, वी टेक वन मिनट।
हरे कृष्ण गुरु महाराज। हमारा आत्मा का हमारे प्योर और इम्प्योर होने से क्या रिलेशन है?
जब भगवान से दूर चले जाते हो तो इम्प्योर हो जाता है, और जब भगवान के साथ रहते हो तो प्योर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। आत्मा का स्वरूप, शुद्ध आत्मा का मतलब है जो आत्मा अपना स्वरूप में है, और जो आत्मा का स्वरूप जब विरूप बन जाता है तो वो है विश्व, उसका इम्प्यूरिटीज। तो इसका कारण क्या होता है, जो भगवान से, भगवान को जब हम छोड़ देते हैं, त्यागते हैं, तो हमारा स्वरूप विरूप बन जाता है। और जब हम भगवान के साथ रहते हैं तो हम अपना स्वरूप में रहते हैं, है ना? शुद्ध और अशुद्ध का मतलब यही होता है,
शारीरिक रूप से शुद्ध अशुद्ध होना और आत्मा।
नहीं, हम तो शरीर के विचार नहीं कर रहे हैं, आत्मा का विचार।
आई मीन टू से शारीरिक रूप
से। शारीरिक रूप, शरीर भी जब तक भगवान को सेवा में लगता है तो शरीर शुद्ध है, जब शरीर भगवान को सेवा में नहीं लगता है तो ये शरीर दुख का कारण बन जाता है, है ना? तो तुम दुख चाहते हो या सुख चाहती हो, तो भगवान को सेवा करते रहना, भगवान के साथ संपर्क जोड़ते रहना। ओके सो कल फिर मिलेंगे और